वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची लाहौर इस्लामाबाद भालपुर पिशावर सियालकोट दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह खैर गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल 9 ज़िलकाद 1444 हिजरी मई की 30 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ नाम है मेरा दिल सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी बातें आपकी पसंद के म्यूजिक आप लोग के मैसेजेस लेकर दिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स अ ब्राइट एंड सनी एंड वार्म ह्यूमन मॉर्निंग हियर इन कराची विद द एक्चुअली वेरी लिटिल विंड सो नथिंग मच टू टॉक अबाउट। आई होप वेदर इन योर रिस्पेक्टिव सिटीज हैज बीन ट्रीटिंग यू वेल। नूरी की आवाज प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं, दिस इज तेरे साथ। मिलते हैं आपसे इस सॉन्ग और एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। Or yeah, I think we will move straight to a commercial break. So catch you in a bit. Welcome, my guys. Ek baar phir se aapko khushamdeed kehte hain. This is the Sunrise Show with me, Adil, and good morning. And doston ne program abhi tune in kiya hai. Subah ke 7:17 ho chuke hain. Aur hash Sunrise with Adil pe aap log kar rahe hain tweet. So let me check kaun kaun hai हमारे साथ इस वक्त और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। सो जी 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 जनाबे वाला कौन है? अब्दुल रज़ाक साहब ने ट्वीट शेयर किया है, कहते हैं ये खूबसूरत किताब, अच्छा जी मापारा सफदर साहब की किताब है, खुद नविश्त उनकी ऑटोबायोग्राफी। ये खूबसूरत किताब महापारा सफदर साहिबा की आप बीती ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में 60, 70 और 80 की दहाइयों में होने वाले वाकयात और तब्दीलियों की मुख्तसर तारीख भी है। महापारा सफदर अपने ज़माने की बड़ी मशहूर न्यूज़कास्टर पीटीवी में हुआ करती थी, फिर उसके बाद एक तवील अरसे वो बीबीसी से वाबस्ता भी रहीं, बीबीसी उर्दू सर्विस से। बल्कि मैंने जब 1990 के अवाइल में बीबीसी उर्दू सुनना शुरू किया था तो उस वक्त जो ऐसी आवाज़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि जिनको मैं बहुत जल्दी पहचानने लगा था, उनमें से एक आवाज़ मापारा सफदर साहब की भी होती थी। मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली नईमा अहमद महजूर हुआ करती थी, इसके अलावा वक़ार अहमद साहब हुआ करते थे, रज़ा अली आबदी, शफी नकी जामई बड़े अच्छे न्यूज़कास्टर हुआ करते थे, फिर वन ऑफ़ द वेरी फ्यू अकाउंट्स जिनको मैंने सबसे पहले अनफॉलो किया होगा ट्विटर पे। लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है। इसके अलावा जनाब बशीर अहमद साहब कहते हैं सलाम प्यारे अदील, ये जो हमारे कुछ क्रिकेटर बिग बैश काउंटी या काउंटी खेलने जाते हैं इनमें तो अक्सर पाकिस्तानियों को अंग्रेजी जबान पे अबूर हासिल नहीं होता, तो ये मैदान में किस तरह इस चीज़ को मैनेज करते हैं? अगर पाकिस्तानी बॉलर है तो कप्तान कैसे हिदायत देता होगा? नहीं, आप अगर ये समझ रहे हैं कि वो इंग्लिश उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही तो ऐसा नहीं होता। जो खिलाड़ी ज़ाहिर है काउंटी का एक सर्टन लेवल तक पहुंच रहा होता है उसे कुछ ना कुछ इंग्लिश थोड़ी बहुत जिसे आप फंक्शनल इंग्लिश कहते हैं, देखिए इंग्लिश को बोलना किसी भी ज़बान को बोलना और किसी भी ज़बान को समझने में फ़र्क होता है, ये बात आप समझ रहे होंगे। लाइक मैं पंजाबी कोई बोल रहा हूँ तो मैं उसको समझ सकता हूँ, बट अगर कोई मुझसे बोले कि यार पंजाबी बोल के दिखाओ तो मैं ऐसी पंजाबी बोलूँगा कि पंजाबी बोलने वाले जो हैं वो अपनी ज़बान बोलना छोड़ देंगे, कहेंगे यार तेरी मेहरबानी माफ़ कर दे नहीं बोलेंगे पंजाबी हम। तो वो सिलसिला यही होता है अंग्रेज़ी का भी। तो ये जो क्रिकेट की ज़ाहिर इंग्लिश होती है उसमें आप बैठ के अब विलियम शेक्सपियर या चार्ल्स डिकेंस या विलियम वर्ड्सवर्थ को जो डिस्कस तो नहीं करते होंगे ना, आप उसमें बैठ के वो टिपिकल बातें क्रिकेट की लिंगो इस्तेमाल हो रही होती है, जो क्रिकेट की अपनी मखसूस ज़बान है वो इस्तेमाल हो रही होती है, सो उसमें कोई इनको समझने में इतनी मुश्किल नहीं होती होगी। इतना बड़ा मसला नहीं है मेरे भाई प्यारे बशीर, जिसकी वजह से आपको ये लगे कि क्रिकेटर बिल्कुल कुछ समझ ही ना पाए, बिल्कुल कोरे हों। भाई बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, फुटबॉलर जा रहे होते हैं आपको पता है हम तो फिर भी थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ लेते हैं, लेकिन ये जो यूरोपियन फुटबॉलर्स वगैरह और ये सब होते हैं ये तो, या साउथ अमेरिका से फुटबॉलर्स आते हैं ब्राज़ील वगैरह से, इन्हें तो कुछ भी इंग्लिश नहीं आती है, फिर ये जाके खेल रहे होते हैं डिफरेंट लीगों में दुनिया में, तो वो भी वहाँ एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये है मेरे भाई, आई होप के आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। ओके जी, कल का आपका शो अभी तक अपलोड नहीं हुआ, इसकी वजह से हमने यूट्यूब के अलावा कोई किस कैसे सुन सकते हैं, खासकर अगर हमारे जैसे पाकिस्तान से बाहर हों तो आप क्या कर सकते हैं मुझे बताएं। यूट्यूब के अलावा हमारे दोस्त जो हैं वो जनाब अहमद भाम साहब, उनकी गूगल ड्राइव पे वो रोज़ाना शो अपलोड कर रहे होते हैं, तो उनकी गूगल ड्राइव का आप लिंक ले सकते हैं बशीर अहमद, प्यारे बशीर अहमद, और आप ये काम कर सकते हैं. भाई आज हमारे इंटरनेट में जो है ना वो ज़रा मसला चल रहा है, और इंटरनेट में मसला चलने की वजह से बहुत सारे दोस्त जो कि लाइव स्ट्रीमिंग पे जो है वो इनसार कर रहे होते हैं, वो आज हमारा प्रोग्राम जो है वो नहीं सुन पा रहे हैं. मुझे भाम साहब ने ये बताया है कि सिर्फ लाहौर की जो स्ट्रीमिंग है वो चल रही है, बाकी कराची और इस्लामाबाद की जो स्ट्रीमिंग है उसमें नारा मस्ताना जो है वो नारे पे नारा लगाया जा रहा है और बढ़ नहीं रहा है वहाँ से आगे. सो मैंने हमारे इंजीनियर बाबू को बोल तो दिया है, मैंने कहा इंजन बाबू ज़रा आप जाके ज़रा बराए मेहरबानी चेक कीजिए कि ये मसला क्या हुआ है, और मुझे लग रहा है कि वो इस वक्त तनदही के साथ काम कर रहे होंगे. सिस्टम्स को मेरे ख्याल से एक रीबूट मानना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा. वो ज़रा एक बार हो जाए तो फिर देखते हैं, थोड़ी देर में उम्मीद है कि अफाका हो जाना चाहिए. वालदा भी हमारी जो है वो इस वक्त कुछ जी मैसेज आ गया मेरे पास कनाडा से, और वो ये कह रही हैं कि भाई ये ट्रांसमिशन तो आपकी चल नहीं रही है, क्या किया जाए इस हवाले से. और हमारे एक भाई ऑल इज़ वेल का भी मैसेज आया है, वो कहते हैं 107.4 स्टक अप एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ द सॉन्ग इज बीइंग प्लेड ऑन रिपीट मोड, काइंडली चेक. ओके ऑल इज़ वेल भाई. अच्छा रेडियो गार्डन्स एंड अदर, बिल्कुल जी प्रॉब्लम है ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि खलबली सी मची हुई है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में. सो आई रियली विश आई कैन फिक्स दिस थिंग आउट. द ओनली थिंग दैट आई कैन डू राइट नाउ कि मैं ऐसे लोगों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग अपनी स्टार्ट कर सकता हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग से मुराद इंस्टा लाइव कर सकता हूँ, यही मेरे पास एक आइडिया समझ में आ रहा है, और तो मुझे कुछ नहीं आ रहा. अनलेस के इंजीनियर बाबू आके मुझे बता दें कि प्रॉब्लम है क्या और क्या उसको फिक्स होने का अभी चांस है या नहीं. तहसीन अमजद कहते हैं गुड मॉर्निंग, नाइस एंड ब्यूटीफुल मॉर्निंग हेयर. वाई अ फेमस बेवरेज ब्रांड इज नो मोर इन द मेन मार्केट, व्हाट्स द इशू विद द ब्रांड? शेजान की ये बात कर रहे हैं. शेजान इज माई मोस्ट फेवरेट ब्रांड. शेजान पे तो आपको पता है कि उनका जो इश्यूज थे उनके सबका ओनर्स के साथ, उनकी जो मजहबी वाबस्तगी थी उसकी वजह से इस ब्रांड के खिलाफ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा एक मुनज़्ज़म एक कैंपेन जो है वो चलाई गई है. लेकिन मेरा जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी दानस्त है, उसके मुताबिक जो इसके पिछले ओनर्स थे वो अब इस बिज़नेस को बेच बाच के हो सकता है पाकिस्तान छोड़ के ही चले गए हों. मुझे नहीं पता कि वो जिस सेक्ट से बिलोंग करते हैं या जिस स्कूल ऑफ थाट से बिलोंग करते हैं वो पाकिस्तान में रहते क्यों हैं. तो क्योंकि जो हमने ज़ाहिर आपको पता है पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ के लिए रहने के लिए बहुत मुश्किल मुल्क है, और मैं कभी कभार माइनॉरिटीज़ से मिलता हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी होती है, भाई क्या कर रहे हो पाकिस्तान में, कोई दुनिया में कोई मुल्क वुल्क ढूंढो और वहाँ पर जाओ यार. लेकिन खैर एनीवे, तो अब शेजान, अच्छा मैं जिस मार्केट में जाता हूँ या जिस सुपर स्टोर में 2-3 जाता हूँ, मुझे वहाँ पर कराची में यहाँ शेजान की प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं. अब मुझे नहीं पता कि आप जहाँ पे रहते हैं गुजर खान में, वहाँ पे हो सकता है कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के कोई मसले हों, हो सकता है कि कुछ मार्केट से उन्होंने अपने आप को पुल आउट किया हो सकता है, इस तरह की वजूहात हो सकती हैं. अच्छा जी आप कहते हैं द सनराइज शो मंडे 29 मई इज नॉट अवेलेबल ऑन यूट्यूब टुडे ड्यू टू टेक्निकल डिफिकल्टी सोशल मीडिया टीम. अच्छा ये इन्होंने आज रात गए, मेरे पास एक ट्वीट है जो कि शाम को 4:08 पे इन्होंने जो है वो साउंड क्लाउड पे शो को अपलोड किया है. इसका मतलब ये कि यूट्यूब पे ये शो जो है कल हमारे कैमरे वगैरह पे ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो साउंड क्लाउड, तो अगर आपको कल का प्रोग्राम सुनना है तो बराए मेहरबानी आप साउंड क्लाउड पे जाके जो है वो सुन सकते हैं. चलें जी, सब लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं. लाइव स्ट्रीमिंग नॉट वर्किंग, क्या करें आप मुझे बताएं, व्हाट कैन आई डू. इंजीनियर बाबू भी आके कोई मदद नहीं कर रहा है मेरी यार. अच्छा जी जावेद साहब कहते हैं व्हाट्स इन द यूएस डेट सीलिंग डील. आज 11 डेट सीलिंग पे बात करनी है, कल हमारे पास टाइम नहीं मिला, हम इधर उधर की बातें करते रहे और इसकी वजह से आपको तफसीलात नहीं बता सके. लेकिन यूएस ऐसा लग रहा है कि वो जो एक फाइनेंशियल कैटास्ट्रफी जिसकी बात की जा रही थी, एक अजीम मौशी सानहा जिसकी तरफ अमरीका बढ़ रहा था, लग रहा है कि वो उससे बचने में कामयाब हो जाएंगे. इसके अलावा जावेद साहब ने एक और खबर शेयर की है, एलिजाबेथ होम्स इज गोइंग टू प्रिजन, विल शी एवर पे विक्टिम्स टू. ऑफ कोर्स नॉट, देयर इज नो चांस. एलिजाबेथ होम्स जेल जाने वाली हैं, उनके जेल का जो टर्म है आई थिंक शायद उनको 11 साल जेल में गुजारने हैं, उसका आगाज होने वाला है. ये बड़ा मशहूर केस था स्टार्टअप की दुनिया के अजीम तरीन फ्रॉड्स में से, ये एक फ्रॉड था. एक कंपनी इन्होंने बनाई थी खातून ने जिसका नाम थेरोनस था, और एक ज़माने में इनको कहा यह जा रहा था दैट शी इज़ द स्टीव जॉब, शी इज द मॉडर्न स्टीव जॉब, और उनकी जो इन्वेंशन है वो मेडिकल की दुनिया में एक इनकलाब बरपा कर देगी. बट लेटर ऑन वी गॉट टू नो दैट इट टर्न आउट टू बी अ फेक थिंग, और ये जाली इन्वेंशन थी, और उस पर फिर उन्होंने बहुत बड़ी फंड रेजिंग की थी. एंड शी वॉज द यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर एट वन पॉइंट इन टाइम. लेकिन खैर इस पे, इस केस पे हमने काफ़ी पिछले साल बात की थी, और इनके बॉयफ्रेंड भी हुआ करते थे, क्या नाम था उनका, सनी बलवानी, और इंडियन ओरिजिन के थे ये भी, और ये तो जेल सर्व कर रहे हैं अपनी. बट ये जो एलिजाबेथ होम्स हैं, ये जेल अभी सर्व अभी तक इन्होंने नहीं किया, अपने आप को जेल से बचा के रखा हुआ है. चलें जी, और कौन है भाई हमारे दोस्त, अभी बस ढाई मिनट रह गए, मेरा ब्रेक पे ही जाते हैं हम सीधा. दानिश बदर साहब ने, आतिफ तौकीर साहब कोई अपनी नज़म पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं. ख़ता करने वालों ख़ता जानते हो, ये आतिफ तौकीर हमारे ना ये कॉलीग हुआ करते थे अपना कराची 107 में, तो अब तो हर बड़े इनकलाबी शहर बन गए, जर्मनी बेस इनकलाबी शहर. बहरहाल हमने सारे इनकलाबियों के इनकलाब भी अभी देख लिया पिछले एक साल में, कि ये बेसिकली ये जितने इनकलाबी थे ये इनके इनकलाब थे क्या आखिर में. तो ये आतिफ तौकीर साहब भी माशाल्लाह अच्छी तरह एक्सपोज होकर बैठे हैं. आगे बढ़ते हैं. शहजाद जोया साहब जी, गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान हॉकी. बिल्कुल जी, आज पाकिस्तान हॉकी के हवाले से हमें तफसील से बात करनी है. काफ़ी दिनों बाद कोई अच्छी खबर जो है वो मिली है. इसके अलावा देन उम्मे एमन जो है वो गुड मॉर्निंग कहती हैं. इसके अलावा पीर जहीर साहब का मैसेज आया है, ये कल की इन्होंने तिब्बत पाउडर वाली तस्वीर उठा के कहीं लगाई हुई है. सर कहते हैं जी, मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन मिस्टर नासिर हुसैन साहब, मिर्जा हुमायूं बेग साहब, लिसनिंग टू द शो. गुल मुस्तफ़ा, आई हैव सीन तिब्बत टेलकम पाउडर एट होम इन माई चाइल्डहुड. ज़बरदस्त, तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं आप मेरे ख्याल से. नहीं, आपकी नौजवानी में भी तिब्बत पाउडर बड़ा मशहूर होता होगा पीर साहब. मुनव्वर अली साहब कहते हैं, सुबह बखैर, कराची के मौसम में कुछ बताएं, गर्मी ने बुरा हाल किया हुआ है. बहुत शुक्रिया, गर्मी ने वाकई बुरा हाल किया हुआ है. कराची का मौसम बहुत मुश्किल है. और यार मैं अभी कौन सा दिन था, ये इतवार का नहीं, हफ्ते का दिन मैं ज़रा अपने ऐसी स्टूडियो के लिए कुछ शॉपिंग करने जाया, मैं ज़रा सदर की तरफ चला गया था. और जब मैं गया तो मैंने कहा यार अब इधर गया हूँ तो एक दुकान है यहाँ से पैंट भी ले लेते हैं, तो मैंने कहा चलो एक पैंट खरीदते हैं. तो मैं जब पैंट लेने गया था वो लेंथ में थोड़ी लंबी थी, तो उन्होंने कहा कि यार आपको अल्टर करानी है, नीचे जाना पड़ेगा बेसमेंट में. एक बंदा एक टेलर है जो कि हाथ के हाथ 15 मिनट में आपको जो है ना वो ऑल्टर करके देगा. मुझे नहीं पता था कि ऑल्टर करना जो है ना वो इतनी कोई लंबी साइंस होती होगी. लेकिन खैर यार मैं बता ही रहा हूँ, मैं गर्मी का हाल आपको बता रहा हूँ कि वो जब दुकान की वो जो मॉल था एक जो कि जैनब मार्केट के बराबर में एक मॉल था, उसकी बेसमेंट भी थी. यार मैं जब उस बेसमेंट में गया हूँ तो वाकई मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई तंदूर के अंदर मैं आ गया हूँ. यानी यार सलाम है उन लोगों को जो कि पूरा दिन बैठ के वहाँ पे काम करते होंगे. आई एम श्योर सर्दियों में जो थोड़ी बहुत मॉडरेट सर्दियाँ कराची की होती हैं उसमें बड़ा प्लेजेंट वो जगह बन जाती होगी, लेकिन यार वो एक अंडरग्राउंड हीट आइलैंड था वो जिसके अंदर मैं गया हूँ. और वाकई यार आफरीन है, लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं रिस्क कमाने के लिए अपनी. और अगर आप उस तंदूर में काम नहीं कर रहे हैं तो अल्लाह का ज़रूर शुक्र करें कि अल्लाह ने आपको उससे जो है वो बचाया हुआ है. उफ़, ये हाल है इस वक्त गर्मी का, बहुत ह्यूमिड है एंड इट्स वेरी हॉट. बट देन इट्स द मंथ ऑफ मे एंड जून एंड वी रियली कांट कंप्लेन अबाउट इट बिकॉज दैट्स हाउ द वेदर्स गो हियर. चलें जी, ब्रेक की जाने हमें बढ़ना है, लेकिन उससे पहले आखिरी मैसेज डॉक्टर जीशान बेग का, एंड इट इज अबाउट वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे. 2.8 million people around the world have MS. Symptoms are fatigue, vision problem, numbness and tingling, muscle spasms, stiffness and weakness, mobility problem, depression, speech problem, severe pain problem with thinking and learning. The World MS Day is marked on the 30th of May. और आप जानते हैं डॉक्टर साहब ने जो ट्वीट किया है उसमें पाकिस्तान में गालबन MS की जो मशहूर तरीन पेशेंट्स में से एक हैं, दैट इज़ द फेमस शोबिज पर्सनैलिटी ईमान अली. और उनका एक कोट भी इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि आई वॉज एट द पीक ऑफ माई करियर इन 2006, एवरी थिंग वॉज परफेक्ट, बट देन MS हैपेंड एंड इट बिकेम द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ माई लाइफ. अक्सर ईमान अली को लोग टेलीविजन पे देखते हैं और लोगों को लगता है कि वो कोई फेक एक्सेंट के साथ जो है वो बात कर रही हैं और कुछ ऐसा लग रहा है, बट शी एक्चुअली हैज सम ट्रबल इन टॉकिंग. सो या अल्लाह खैर करे. चलें जी, अल्लाह महफूज रखे हम सबको. अभी हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इसके बाद, एक गाना भी सुनेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग. हियर आई एम एंड वेल, अ स्पेशल शाउट आउट टू माय फ्रेंड फहाद चिश्ती. इसके अलावा उनके बच्चे हैं जिनका नाम है सारिम, सैयदा रिदा एंड अब्दुल राफे, और ये भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे होते हैं. आई होप दे आर लिसनिंग राइट नाउ. 7:35 इनके फादर ने कहा था, 36 राइट नाउ. सो बहरहाल वो कहते हैं, लिसन टू योर मॉर्निंग शो एवरी डे व्हाइल गोइंग टू वर्क एंड ड्रॉपिंग किड्स टू स्कूल. माय किड्स हैव बिकम रियली फॉन्ड ऑफ योर शो. दैट इज सो कूल, दैट इज ग्रेट. सो राफे सारिम एंड रिदा, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. ऑलराइट, चलें जी, ग्रेट. बाकी का सीन है, बाकी का सीन है दैट अदील कमर साहब कहते हैं, भाई and all sunrise listeners, is the live stream working? No, Ready Garden not working. Aap the Parveen song playing on the loop. All right, lovely weather in Islamabad. Islamabad ka weather to permanently lovely kar diya, kya baat hai. SK saab program hamara sunte hain in Sydney Strae, kehte hain my office oldest building in New South Wales, perhaps in the whole Australia, 207 year old. Wow, 207 sala purani building mein आप जो है काम करते हैं. इट इज कॉल्ड द मेंस 1816 सिडनीज ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पब्लिक बिल्डिंग. वाओ, दैट इज सो कूल. यार इसमें कोई भूत भूत तो नहीं होता होगा आपकी इस बिल्डिंग में? चांसेस है ना, पुरानी बिल्डिंग्स में आमतौर से बसेरा कर लेते हैं. लेकिन गुड लक टू यू मैक्स, गुड लक. ऑलराइट, शहजाद नेहा साहब सब लिसनर्स को सलाम कहते हैं, थैंक यू. And then Hassan कहते हैं, Coca-Cola says only two people alive know the Coca-Cola recipe and they aren't allowed to travel on the same plane in case it crashes. Do you really think this thing is true? Like Hassan, मैं भी बचपन से यही बात सुनता हुआ आ रहा हूँ, but पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई हकीकत है. कभी ना कभी इसकी जरा fact checking जो है वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह. जी, listening to you on TuneIn app. हाँ, TuneIn पे कहाँ से चल रहा है? जबरदस्त यार. पीर जहीर साहब कहते हैं, बड़े अफसोस की बात है सर, मैं 60 का थोड़ी हूँ, 90s माय यंग एज, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइफ. यार अच्छा, चलिए सर 60 के नहीं होंगे तो 50 की तो दहाई में होंगे सर. वैसे मेरे ख्याल से पीर साहब अब इतने भी जवान नहीं हैं आप, यार क्या ख्याल है. अच्छा जी, शैला अकील कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आज अलैना और हैदर का एनुअल प्ले है. वाओ, सो व्हाट इज द प्ले अबाउट हैदर एंड अलैना एंड व्हाट रोल्स आर यू प्लेइंग? Beautiful weather in Lahore. Shaheen कहती हैं, thank you. चलें जी प्रोग्राम में, as I said, आगे चल के हम प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे. We'll talk about the US debt ceiling. इसका जिक्र होगा. स्पोर्ट्स में आज ऑफ कोर्स हम हॉकी पे भी बात करेंगे. तो पाकिस्तान की जो जूनियर हॉकी टीम है उसने अपना एक मैदान तो सर कर लिया है, और वो है कि पाकिस्तान ने अगले जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन अपनी जो है वो सिक्योर कर ली है. तो ये एक अच्छा काम हो गया है, और इसके हवाले से ज़रा बात करेंगे, इसमें इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है. और ज़बरदस्त, That is very cool. हमारे फ्रेंड उमर खान फरीदी साहब का मैसेज आया, Today is my birthday. Please wish me on air. Well, उमर खान फरीदी साहब, Happy birthday to you, sir, and wishing you a wonderful day and year ahead. Great. फराज कहते हैं, Tune in is working. That's wonderful. ठीक हो गया, चलें जी, great. भावलपुर is also working. ये कहना है अथर महमूद साहब का. तो प्रॉब्लम जो आज है ना, वो दरअसल है कराची और इस्लामाबाद के सर्वर के हवाले से. सो ठीक हो गया. ऑलराइट देन, इमरान खान साहब ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है, जो कि आज बीबीसी के फ्रंट पेज पर मौजूद है. क्रैक डाउन इज अनटेनेबल. इमरान खान जो है वो ये कहते हैं, पाकिस्तान एक्स लीडर सेज ही विल वेट एंड सी व्हाट हैपेंस एज हिज पार्टी कॉलीग्स आर अरेस्टेड एंड ही मे बी टू. ठीक हो गया. इसके अलावा लूला डी सिल्वा, अच्छा जी, लूला डी सिल्वा जो है वो आप जानते हैं कि मैंने जिक्र किया है, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं, और जब से वो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बने काफ़ी रेडिकल बातें कर रहे हैं. आपको पता ना, ब्राज़ील की करेंसी के हवाले से, ब्रिक्स से हवाले से, रूस के हवाले से, चाइना से ताल्लुकात के हवाले से. बिकॉज इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो बहुत ही अमरीका नवाज शख्सियत थे, डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी माने जाते थे, जिनका नाम जाइल बोल्सोनारो था. और अभी जो हुआ है वो ये हुआ है कि लूला डी सिल्वा ने वेलकम किया है वेनेजुएलन लीडर निकोलास मडुरो को. और निकोलास मडुरो जो है वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट, जिनके बारे में कहा जाता है कि इसने ऐसी की तैसी कर दी अपने मुल्क की, यानी बहुत ही इनएफिशिएंट रूलर है. और मुल्क में हुगो शावेस के एक टाइम के बाद, जिसमें डिस्पुतन वेनेजुएलन्स ने अच्छा टाइम देखा, तेल की दौलत से माला माल ये मुल्क है, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, लोग अपने मुस्तकबिल से बड़े मायूस हैं, और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो पना गुजीर बन गए हैं, यानी वो मुल्क जो कि एक जमाने में वेल्दीस्ट कंट्री साउथ अमेरिका का माना जाता था, वेनेजुएला, आज ये नौबत आ गई है निकोलस मडुरो के तकरीबन 10 साल इख्तदार के बाद कि लोग अपने मुल्क से भाग रहे हैं और लोग बहुत ही बुरे हालात में और लोग बहुत ही मुश्किल हालात में दूसरे मुल्कों में जाके पना ले रहे हैं, चाहे वो चिली हो, चाहे वो कोलंबिया हो, या वो ब्राज़ील हो, ऑल द वे टिल अमेरिका लोग जो हैं वॉक करके जा रहे हैं. वेरी वेरी बैड सीन वो दीस पीपल. सो लेकिन बहरहाल जी, लूरा डी सिल्वा ने जो है वो वेनेजुएलन लीडर को वेलकम किया है दुनिया में. बहुत कम ममालिक हैं जो कि इस वक्त वेनेजुएला के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और टच में, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज ने तो सॉर्ट ऑफ अ बॉयकॉट किया हुआ है इस मुल्क को. लेकिन लेट्स सी के बट ज़ाहिर है जी, ये देखें ना, इस वक्त जो दुनिया में एक ऑल्टरनेट लीडरशिप है ना, देखें, एक तो अमेरिका है और वेस्टर्न कंट्रीज हैं, नेटो ममालिक हैं, दूसरी जानेब एक ऑल्टरनेट लीडरशिप है जिसमें ज़ाहिर है शी जिनपिंग है, देन यू हैव गॉट व्लादिमीर पुटिन. इस ऑल्टरनेट लीडरशिप में इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं. और इसके अलावा लूला डी सिल्वा, जी हाँ, ब्राज़ील से अगर हम वेस्टर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो उसमें लूला डी सिल्वा वो शख्सियत हैं जो कि ज़ाहिर वेस्ट की लाइन को जो है वो टो नहीं कर रहे हैं और अपनी एक इंडिपेंडेंट एक पॉलिसी जो है वो लेकर चल रहे हैं. रचब तैयब अर्दोगान बाय द वे इज वन ऑफ दोज लीडर्स एज वेल, बिकॉज इंटरनेशनल मीडिया अगर आप कल देख रहे हो, अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो उसमें एक एलिमेंट ऑफ अफसोस था रजब भाई के इलेक्शन जीतने के हवाले से. वो इतने ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया जो है वो उसको खुश नजर नहीं आ रहा था. सो बहरहाल निकोलस मडुरो पहुंचे हैं ब्राज़ील 8 साल बाद. किसी वेनेजुएलन प्रेसिडेंट, किसी क्या, यही प्रेसिडेंट था ब्राज़ील का, उन्होंने जो है वो दौरा किया है. सो दैट इज ग्रेट. ऑलराइट, चलें जी, अभी क्या सीन है, अभी हमें बढ़ना है कमर्शियल ब्रेक की जाने. और इस कमर्शियल ब्रेक के बाद जो है वो हम एक गाना सुनेंगे जिसको मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छा सा गाना सुनेंगे, और उसके बाद वापस आके हम आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर भी डालेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग, वी विल कैच यू एट द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक एंड द कमर्शियल एंड द सॉन्ग. ऑलराइट, 51:07 इज द टाइम. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग इफ यू हैव जस्ट ट्यून्ड इन. प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. थोड़ी देर पहले सॉन्ग चलाया था, जाने कौन थी हसीना, क्या याद दिला दिया भाईजान. नवीद मुनव्वर साहब जो है वो ये कहते हैं, वाकई बड़ा बड़ा आवाज के गानों की खास बात यही हुआ करती थी कि बड़े सिंपल से और बहुत ही आसान से जो है ना वो गाने इनके हुआ करते थे. ऐसा लगता था वाकई कुछ नौजवान से बच्चे बैठ के कीबोर्ड पे जल्दी जल्दी में गाना बना रहे हैं. बट दे यूज्ड टू बी प्रीटी मेलोडियस, वेरी इजी टू हम एंड सिंग एंड ऑल. दिया जलता रहा मेरी उम्मीद का, जाने कौन थी हसीना, वेरी नाइस. चैलेंज शहजाद जोए साहब कहते हैं, नाइस सॉन्ग बिफोर दिस ओल्ड सॉन्ग, नाइस सॉन्ग बिफोर दिस ओल्ड सॉन्ग. ये ओल्ड गाना तो नहीं है यार इतना भी. अनिक साहब कहते हैं, आई ट्यून्ड इन आफ्टर कपल ऑफ डेज, डिडंट डोंट नो यू प्ले रू की या प्याज बाय जुनून, इफ यस तो गुड, इफ यू डिड नॉट प्ले, नहीं मैंने अभी तक नहीं चलाया. अनिक साहब कोई गाना बहुत पसंद है यार. प्लीज विश साइम साथ गुड लक फॉर देयर लास्ट एग्जाम. गुड लक साइम एंड साथ फॉर योर लास्ट एग्जाम. इसके अलावा उमर फारूक कहते हैं, हम ऑयल को रो रहे हैं, वेनेजुएला के पास इतना ऑयल है बट स्टिल दे कांट हैंडल द इकोनॉमी. या दिस इज हाउ बैडली मैनेजमेंट, नाइजीरिया हैज गॉट सो मच ऑयल, बट इकोनॉमिक मैनेजमेंट भी तो कोई चीज है. पाकिस्तान हैज गॉट सो मेनी रिसोर्सेज यार, लेकिन जिन लोगों के हाथ में हमारी इकोनॉमीज रही हैं ओवर द ईयर्स, उन्होंने तबाही फेरी है यहाँ पे. ताहिर जमील, माय किड्स आर साइलेंट लिसनर ऑफ योर शो एंड दे से बाबा हमारी पिक्चर भी अदील अंकल को सेंड करें. लेकिन अदील अंकल आपको ये बोलेंगे कि बेटा नंबर वन, सामने फ्रंट वाली सीट पे आप में से कोई एक बैठे, और आप में से जो भी फ्रंट वाली सीट पे बैठे वो सीट बेल्ट पहने, और पीछे वाली सीट को भी सीट बेल्ट पहन लेनी चाहिए, बड़ा अच्छा रहता है. बिकॉज खुदा ना खास्ता कोई अगर मामलात जो है वो ख़राब हों तो पीछे वाले जो हैं वो भी उतने ही वल्नरेबल होते हैं जितने आगे वाले होते हैं. ओके, योर एनर्जी लेवल लुक्स लो, होप ऑल इज गुड एट योर साइड. नहीं नहीं, ऑल इज गुड एट माई साइड. सुबह रनिंग भी बहुत अच्छी की, सब कुछ किया, बट असल में रात में मैं एक सर्टन आवर्स ऑफ स्लीप का मैं आदी हूँ, और कल उसका 1/3 स्लीप मुझे कम मिला है. सो आई हैव टू मेक अप फॉर दैट इन द आफ्टरनून टुडे, सो और मे बी इन द मॉर्निंग आफ्टर द शो टुडे. सो इस वजह से शायद थोड़ा सा मैं डाउन लग रहा हूँ. आई थिंक आई शुड I don't say that generally, but I think I should have a cup of coffee. I would want to have a cup of coffee right now. TuneIn radio app is working fine. All right, online is working. TuneIn is good. Like TuneIn, बड़े दिनों बाद. चल TuneIn की अच्छी बात आपको पता ना क्या है कि उसकी different streams हैं. तो उसमें कराची स्ट्रीम भी है, उसकी लाहौर स्ट्रीम भी है, उसकी भावलपुर, हर जगहों की उसकी जो है ना स्ट्रीम है. सो दैट इज pretty cool. All right, बाकी क्या सीन है? कोई और मैसेज जनाब अब्दुल रजाक कहते हैं, नौजवानों से गुजारिश है किसी भी सियासी जमात के लिए कानून हाथ में ना लें और ना ही अपना मुस्तकबिल तबाह करें. सियासतदान तो डीले करके इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन मेरे आपके जैसे वर्कर्स जाते हैं, अपने खानदान में सबसे ज्यादा सफर करते हैं. जी हाँ बिल्कुल यार, पब्लिक किसी अमलाक को नुकसान ना पहुंचाएं. प्रोटेस्ट करना वो एक आपका जमहूरी हक है. जब भी इंशाल्लाह कभी हमें हक मिला पाकिस्तान में तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी को नुकसान. और ये जो 9 मई के वाकयात हुए, इससे आई थिंक हमें जितना भी आपकी बॉडी में एड्रेनलिन रश हो, जो भी हो सिलसिला, आप जो हैं वो प्रॉपर्टी किसी भी पाकिस्तान की आवाम की कोई भी चीज़ मिल्कियत हो उसको नुकसान ना पहुँचाएं. प्राइवेट हो या पब्लिक हो, आई थिंक हमें काफ़ी अंदाज़ा हो गया. ले भाई, डॉक्टर नौशीन ने जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ बताई है, रेडियो गार्डन काम नहीं कर रहा. अच्छा वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि भाई अदील आज आप इतनी जल्दी इंस्टा लाइव पे कहाँ से आगे बैठ गए हैं, लेकिन वो कह रही है बस जी रेडियो गार्डन काम नहीं कर रहा. ठीक है चलें जी, कोई बात नहीं, हो जाता है. और कोई और मैसेज गुड मॉर्निंग, नासिर हुसैन साहब कहते हैं, लिसनिंग टू द प्रोग्राम इन दुबई, अटेंडिंग आवर एनुअल कॉन्फ्रेंस, मेट अ फ्यू फ्रेंड्स एंड found them extremely concerned about the situation in Pakistan. I mean, you have to be देखें पाकिस्तान की कंडीशन के हवाले से तो इस वक्त मियां साहब भी परेशान हैं. लाइक जिनके हाथ में हुकूमत है, कहते हैं जी 8,000 किलोमीटर दूर बैठ के वो पाकिस्तानी किस्मतों के फैसले कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की सिचुएशन के हवाले से जो है ना वो हैरान है और परेशान है. नहीं हैरान नहीं है, परेशान है. हैरानी की तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन बहरहाल परेशान जरूर है. चलें जी आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर जो है वो नजर डालते हैं. वाह वाह वाह, क्या टाइम पे पूरे अखबारात का सेट आ गया मेरे पास. बहुत शुक्रिया हमारे गार्ड साहब, बड़े अच्छे आदमी हैं. आगे बढ़ते हैं जी. न्यू लॉ स्टॉल्स पंजाब पोल केस इनडेफिनेटली, सीजेपी टेकन बाय सरप्राइज, अग्रीज ऑर्डर अंडर आर्टिकल 183(4) रिक्वायर्ड सम फॉर्म ऑफ सब्सटेंसिव रिव्यू. Attorney General asked to get instruction regarding intrusive bill aimed at regulating Suo Motu Power. अच्छा जी ये जो केस था इसमें हुकूमत की चाल कामयाबी से उन्होंने चल दी है और वक्ती तौर से जो है जाहिर है जो पंजाब में इलेक्शंस ना कराने के हवाले से जो रिव्यू पिटिशन इन्होंने फाइल की थी इलेक्शन कमीशन ने, उसमें गवर्नमेंट को वक्ती तौर से रिलीफ मिल गया है. बिकॉज कल काफ़ी सारे लोग ये समझ रहे थे कि वैसे तो खैर सुप्रीम कोर्ट का रोल और ये सारी बातें बिल्कुल ही जैसे कहना चाहिए आपको कि एक इवन सुप्रीम कोर्ट जिस मुल्क में आपको पावरलेस अगर आने लगे तो वहाँ पे सिचुएशन क्या होगी, लेकिन अभी सिचुएशन जो हुई है वो ये हुई है कि ये जो गवर्नमेंट ने एक लॉ पास कराया था, आपको पता है कि जिसमें जजेस प्रोसीजर एंड फलाना पता नहीं क्या उसका केस का उस लॉ का जो है वो नाम था, और बेसिकली रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट 2023 ये इसका नाम है. और जब ये पता चला चीफ जस्टिस साहब और बेंच को कि ये कानून रात में सदर ने इस पे साइन कर दिया, दैट मींस ये जो लॉ, ये जो एक बिल था, ये अब बाकायदा एक एक्ट बन चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो फिर जाहिर है इस केस के हवाले से जिसकी सुनवाई चल रही है इसके आगाज के हवाले से सवालात उठ जाते हैं. हाउएवर अगर आपको ये बात पता हो तो इस पे ये इनडेफिनेटली क्यों इसको आगे बढ़ाया, इसलिए बढ़ाया है बिकॉज नाउ द 8 जो जजेस का पैनल है, एक जो जजेस का बेंच बनाया हुआ है, वो इस केस को रिव्यू करेगा जिसमें इस कानून को चैलेंज किया गया है कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो जजेस के इख्तियारात को इस तरह कम नहीं कर सकती विदाउट एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के कानून में कोई अमेंडमेंट इस वक्त हो नहीं सकती बिकॉज हम जानते हैं कि नेशनल असेंबली का कोरम जो है वो पूरा नहीं है इस वक्त. लेकिन जो पॉइंट अब यहाँ पर आया है ये कि कल इसकी सुनवाई, परसों माफ कीजिएगा, 1 जून को इस केस की सुनवाई होनी है, जिसमें अगर आपको याद हो कुछ हफ्तों पहले उन्होंने इस पे स्टे दे दिया था और क्या हुआ था. लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं. 8 handed over to army for trial over 9th May riots. ओके जी, एक्सप्रेस ने आज अपनी लीड यही बनाई है. सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट नाफिस, वो मोटो केसेस में अपील का हक, माजी से इसका इतलाक होगा. अच्छा ये काफ़ी डिस्कशन जो है वो ये कल चलता रहा कि क्या इसमें, इस पर्टिकुलर केस में क्या मियां साहब और जहांगीर तरीन जैसे लीडरान जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, और इसका इस पे जाहिर है दी ओपिनियंस आर डिवाइडेड, इस पे जो है वो ओपिनियन डिवाइडेड है, इस पे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या होगा। जाहिर है ये केस जब सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट में चलेगा तो फिर लेट्स सी क्या होता है, इसमें क्या चीज़ निकल कर सामने आती है। अच्छा जी, क्या है, खुफिया मुलाकातें मामलात नहीं चल सकते, जंग ने आज अपनी लीड बनाई है, हुकूमत जारहाना अंदाज से गुरेज करे, ऑडियो लीक्स कमीशन कलदम करार नहीं दिया, चीफ जस्टिस का ये कहना है। एक्ट का दायरा कार कानून बनने से पहले के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के रूल्स पर भी होगा नजर सानी, दरख्वास्त की समाअत लार्जर बेंच करेगा, ये बेसिकली उस कानून में जो बात की गई है। ओके जी, इसके अलावा चीफ जस्टिस इख्तियारात कानून जुमा से नाफिज हो चुका, समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल का इंकशाफ, वकील के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, जस्टिस मुनीब अख्तर का ये कहना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है, काजी फैज ईसा से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात, ऑडियो लीक्स कमीशन समेत अहम कानूनी उमूर पर तबादला है ख्याल, ऑलराइट। और क्या सिलसिला है, नो मिनट्स ऑफ मीटिंग दैट पेव्ड वे फॉर लैंड ट्रांसफर टू आर्मी, लाहौर हाई कोर्ट टोल्ड, टू मिनिस्टर्स अटेंडेड अक्टूबर 2022 ऑन द समरी ओकेड बाय एक्स सीएम बुजदार अ ईयर अर्लियर। ये केस चल रहा है, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा जी। और तरीन ग्रुप रेव्स अ बिट टू पोच पीटीआई डिजर्टर्स, यानी पीटीआई को जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, इस वक्त जहांगीर तरीन फुल एक्टिव हुए हुए हैं, कल उन्होंने अलीम खान से भी मुलाकात की, इसके अलावा ओन चौधरी से भी जो है वो इनकी मुलाकात हुई है, फॉर्मर मिनिस्टर इसा खाकवानी से भी मुलाकात हुई है, और जाहिर इन लोगों से मिल के सुनने में ये आ रहा है कि ये कलेक्टिबल्स की एक नई पार्टी जो है वो बनाई जा रही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अनटिल, देखें अब ये अलीम खान हुए, जेकेटी हुए, ये लोग खाकवानी हुए, तो बहुत पहले छोड़ के चले गए थे पीटीआई को, लेकिन अभी हाल ही में जो लोग छोड़कर गए हैं इनको भी जो है वो फारिग करने की बात की, इनको भी पोच करने की बात की जा रही है। बॉर्डर एंड टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक की जाने मिलते हैं, इसके बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। ऑलराइट, वेलकम बैक, दैट वाज शिराज उप्पल। यार वैसे ये गाना भी, वैसे शिराज उप्पल ने ना एक क्लासिक गाना बनाया था यार, ये बिल्कुल बड़ा ना ये इमोशनल गाना है, पता नहीं मुझे याद है कि मैं जब ये गाना पहली बार सुना था मैं एक सर्टन स्टेट ऑफ माइंड में था, एक सर्टन स्टेट ऑफ माइंड, ये शादी से बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, एक सर्टन स्टेट ऑफ माइंड में था, ये गाना मुझे इतना इमोशनल लगता था यार, खुदा की कसम क्या बताऊँ। फरहान हसन कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड फ्लूट, ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड फ्लूट। और इसके अलावा शहजाद नियाज साहब कहते हैं नाइस सॉन्ग, माय फेवरेट। है भी तो शिराज उप्पल साहब आपकी तरह सदन पंजाब के, क्या बात है। हामिद फल्की साहब, भाई हमारे दोस्त हामिद फल्की साहब, बड़ा अच्छा हुआ, उनकी तबीयत बड़ी नासाज थी यार, तो इनसे अभी वीकेंड पे मैसेजेस एक्सचेंज हुए, उससे अंदाज़ा ये हुआ कि वाकई उनके बोलने के अंदाज से लग रहा था कि इनको सिवियर जो भी मसला हुआ हुआ था वो काफ़ी इंटेंस था। लेकिन माशाल्लाह, गुड टू हेयर फ्रॉम यू ब्रदर, दैट यू आर बैक नाउ। और कहते हैं द न्यू लॉ विल नॉट कवर जहांगीर तरीन एंड नवाज शरीफ केसेस, द रिव्यू आर ऑलरेडी सेटल्ड। या बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं कल लेकिन ये देख रहा था कि लीगल फ्रटर्निटी इस पर डिवाइडेड थी, लेकिन बाद में आई थिंक दोनों तरफ के लॉयर्स, इवन जो वजीर कानून पाकिस्तान के हैं इस वक्त तारड़ साहब, वो भी यही कहते हैं कि जी मियां साहब और जहांगीर तरीन का इस केस से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि उनके रिव्यूज सब हो के सब गेम खत्म हो चुकी है। सो ये है, ठीक है, चलें चलिए अब ऐसा करते हैं, आज के अभी खेलों के हवाले से बात करते हैं, देर हो गई थोड़ी सी, हॉकी की बात करते हैं। भाई लड़के छा गए हमारे माशाल्लाह, और लड़के जो हमारे छा गए हैं वो हुआ ये कि पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम की मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें माशाल्लाह इन्होंने कामयाबी हासिल की कर जापान के खिलाफ। मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये गेम देखा या नहीं, मैंने बिट्स एंड पीसेस में, अभी मैं इंस्टाग्राम में बता रहा था कि कल मेरी अपने जो स्टूडियो मैंने घर में बनाया हुआ उसमें कोई टेक्निकल स्ट्रगल मेरी चल रही थी, आई जस्ट कुड नॉट फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट गेम, लेकिन मैंने जो पैचेस में इसको देखा उसमें मुझे अंदाजा ये हुआ कि पाकिस्तान टीम लड़के कल इंडिया के मैच के मुकाबले में, इंडिया का मैच आई रियली फील के आई थिंक वो हमें जीत जाना चाहिए था वो मैच, बट अनफॉर्चुनेटली फिनिशिंग एंड ऑल वो हम नहीं कर पाए। लेकिन कल पाकिस्तान ने 3 गोल स्कोर किया अगेंस्ट जापान, और एक डेजा वू किसी फीलिंग आ रही थी, बिकॉज ये जापान ही के खिलाफ, अगर आपको याद हो पाकिस्तान की जो सीनियर जिसे कहते हैं कि हॉकी टीम थी, वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। अगर आपको याद हो एक बड़ा खौफनाक इंसिडेंट, खौफनाक वाकया हुआ था जब जकार्ता में होने वाले मैच में जापान के खिलाफ पाकिस्तान ने गोल स्कोर कर दिया था, लेकिन पता ये चला कि वो मूवमेंट जिसकी वजह से पेनल्टी कॉर्नर पाकिस्तान को मिला था, और जिसके सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान ने गोल स्कोर किया था, और उस गोल स्कोर करने की वजह से पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने में, मेन सीनियर वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाता. अनफॉर्चुनेटली उस वक्त पाकिस्तान के 12 खिलाड़ी जो हैं वो मैदान में मौजूद थे. इस पे आपको पता है कि पीसीबी की जो इस वक्त मैनेजमेंट है उसमें, जिसमें ऑफ कोर्स हैदर हुसैन सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बाद में बनाई थी और टीम के मैनेजर ख्वाजा जुनेद पे लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया था कि उनकी वजह से पाकिस्तान हॉकी का इतना बड़ा नुकसान हुआ. जापान की ही टीम थी, कल हमारी जूनियर टीम को कल शिकस्त देनी थी जापान को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए. कल हम खुदा ना खास्ता अगर इनसे हार जाते so we would not have qualified for the junior world cup as well, but aisa nahi hua. ladkon ne bahut acha khela, do ke muqable mein 3 goals se humne kamyabi hasil ki hai. salala mein hone wale ye matches hain. ab pakistan is tournament ke bhi, junior asia cup ke bhi semi final mein pahunchne mein kamyab ho gaya hai aur pakistan ka muqabla jo hai wo hone wala hai malaysia ke sath. dusri janib bharat muqabla karegi junubi korea ke sath. there is a very strong probability के पाकिस्तान जो है वो बुध को, पाकिस्तान का बाय द वे कल मैच होना है, पाकिस्तान एंड इंडिया कैन बी प्लेइंग ईच अदर इन द फाइनल अगेन. अच्छा चलिए क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं. एशिया कप, भारत जिद पर अड़ गया, डेडलॉक बरकरार. एसीसी अरकान की गैर रस्मी मुलाकात में बांग्लादेशी बोर्ड के सरबराह शरीक ना हुए. श्रीलंका और अफगानिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद करने के भारतीय मौकिफ की हिमायत कर दी. पीसीबी को भी बातचीत में शरीक होने की दावत दिए जाने का इम्कान. पंकज खमजी को उलझी गुतियां सुलझाने का टास्क मिल गया. हतमी फैसला एग्जीक्यूटिव मीटिंग में होगा. अबे खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना बंद करो यार. पता नहीं क्या रुलाए जा रहे हैं इंडियन. एंजॉय इनको खेलना नहीं है वैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं ये लोग. आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है भाई. हाँ ये पता चल गया, ये आईसीसी के चेयरमैन और ये चीफ आईसीसी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव यहाँ पर आए हैं. इसके अलावा जनरल मैनेजर जो हैं वो वसीम खान साहब, वो भी मौजूद हैं. अपने ऑफिस गए होंगे, पुराने ऑफिस, वसीम साहब अपने दफ्तर गए होंगे और उन्होंने वहाँ टेबल के नीचे लिखा हुआ होगा वसीम वाज हेयर, यू नो, शॉशैंक रिडेम्पशन. लेकिन बहरहाल अभी सीन क्या हुआ है कि अच्छा लाहौर इनकी आमद हो गई. अच्छा बेसिकली पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शिरकत ना हो, दैट इज़ द एजेंडा. मैं कल ये कह रहा था ना कि एजेंडा हमें नहीं पता, नहीं, दिस इज़ द एजेंडा. क्योंकि पाकिस्तान ज़ाहिर धमकियां दे रहा है. मेरे ख्याल आईसीसी को भी अंदाजा हो गया कि इंडिया फुल अपनी गंद करेगा इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के हवाले से और नहीं खेलेगा, और कहीं ऐसा ना हो कि रिटेलिएशन में पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप से खेलने से इनकार कर दे. तो आईसीसी का ये आपको पता है कि फ्लैगशिप इवेंट होता है, बाय द वे आई मीन इस इवेंट की इंपॉर्टेंस T20 वर्ल्ड कप से ज्यादा है. 50 ओवर जो वर्ल्ड कप होता है, एक तो टूर्नामेंट लंबा भी होता है और इसमें जो है वो मैचेस लंबे होते हैं, इसके जो राइट्स वगैरह हैं वो ज़्यादा महंगे बिक रहे होते हैं. तो आईसीसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है और उसमें पाकिस्तान की जो कारकर्दगी शिरकत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो या लेट्स सी क्या होता है. अच्छा जी आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है. टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, जी बिल्कुल, अभी आपको पता है कि जो बड़ा, अब तो आईपीएल भी कल रात सुना एक सनसनी खेज मुकाबले के बाद जो अख्ताम को पहुंच गई है, और महेंद्र सिंह धोनी साहब की टीम जो है वो एक बार फिर से आईपीएल जीतने में कामयाब हुई. तो मैंने मैच तो मैंने ज़ाहिर नहीं देखा, लेकिन बीबीसी में मैं सुबह बुलेटिन सुन रहा था, उसने बताया कि पता नहीं आखिरी दो बॉलों पे 10 रन इन्होंने बनाए हैं. क्या किया रविंद्र जडेजा ने, दो छक्के छक्का चौका कुछ मारा है जिसकी वजह से वो मैच जीतने में जो है वो कामयाब हुए हैं. तो अब आईपीएल इज ऑल्सो फिनिश्ड, सो द फोकस नाउ अगेन येट अगेन शिफ्ट्स टू इंटरनेशनल क्रिकेट नाउ. और आप जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इस वक्त का जो पहला बड़ा मैच होने वाला है, दैट इज द फाइनल ऑफ द आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप. और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का जो ये फाइनल होना है, आपकी नॉलेज में ये बात भी होगी दैट दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस बिटवीन इंडिया, एक बार फिर से फाइनल खेल रहा है, और उनका मुकाबला जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा. एंड इन केस यू आर वंडरिंग ये मैच कब होना है, सो दिस विल बी प्लेड, इट विल बी स्टार्टिंग एट द ओवल ऑन द 7th ऑफ जून. जून की 7 तारीख से इस मैच का हो रहा है आगाज. ठीक हो गया सिलसिला. इसके अलावा यूके में, इंग्लैंड में उनकी T20 टूर्नामेंट जो है, जिसको वाइटैलिटी T20 ब्लास्ट कहा जाता है, वो जारी है. और इसमें जिक्र करते हैं जरा कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हवाले से. भाई माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा उसामा मीर तो छाया हुआ, इसमें कॉन्फिडेंस आ गया लड़के में एकदम, जैसे कहते हैं ना जैसे कोई स्टेरॉयड का इंजेक्शन लगा लिया. इसने कल 15 गेंदों पे 32 रन बनाए उसामा ने वोस्टरशायर की जानिब से खेलते हुए. और उसामा ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की, 4 ओवर 33 रन, और 2 खिलाड़ियों को जो है वो इसने आउट किया, तो वेल डन उसामा, शाबाश लड़के. कल हमारा नसीम शाह भी एक्शन में था बाय द वे फॉर लेस्टर शायर, चार ओवर में 32 रन दिए और नसीम ने दो खिलाड़ियों को आउट किया. चले अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning jin doston ne program abhi tune in kiya hai. All right ji, aap log ke messages pe nazar dalte hain. Kya hai bhai, Pakistan in pictures ne sharing the stunning capture of a dragonfly at Qaid-e-Azam University Islamabad. Very nice. Malik Irfan kehte hain, I'm not surprised to see Afghan cricket board siding with BCCI, as expected they are to backstab PCB again. यार श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी यही कर रहा है. लेकिन द पॉइंट इज, हमें एक प्रैक्टिकल बात सोचनी पड़ेगी ना. व्हाट डज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैव टू ऑफर इन रिटर्न? हम उनको इन रिटर्न ऑफर क्या कर रहे हैं? इंडियन क्रिकेट बोर्ड उनको एक मैच ऑफर कर देगा, दे विल मेक मोर मनी देन हैविंग अ क्रिकेट सीरीज विद पाकिस्तान. सो अपनी औकात जरा अपने अरे यार, इतने खूबसूरत एक फारसी जो है एक एक लाइन है, अयाज नहीं औकात खुद बाशनास क्या है, मुझे प्लीज करेक्ट कीजिए. ये हमारे उस्ताद मोहतरम बहुत इस्तेमाल करते हैं, कद्र खुद बाशनास, कि अयाज अपनी औकात को जानो और अपनी औकात को याद रखो. मुझे एक महमूद गजनवी का एक, आपको पता है कि उसका फेवरेट जो उसका सर्वेंट था, उसका गुलाम था अयाज, महमूद अयाज, जो हमने बड़ा सुना है और इकबाल ने बड़ा, हमारे जो शुआरा रहे हैं बड़े फैसिनेटेड रहे हैं, अयाज कद्र खुद बाशनास, मेरे ख्याल से आई थिंक दिस इज द थिंग. तो अयाज के बारे में ये कहा जाता है कि वो हमेशा अपने साथ एक संदूक रखा करता था, बिकॉज अयाज के बारे, बाय द वे आप जानते होंगे कि अयाज जो था उसको कहा जाता है दैट ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर और द रूलर ऑफ द सिटी ऑफ लाहौर. और कहते हैं कि अयाज का मकबरा अभी भी जो है वो लाहौर में किसी जगह पर है, लाइक इट्स देयर, पीपल नो, ये कोई सीक्रेट उसका कोई टूम नहीं है. तो उसमें अयाज अपने साथ, इवन दो उसको इतनी इज्जत मिल गई थी, महमूद गजनवी ने उसको गवर्नर बना दिया था लाहौर का, और लाहौर उस वक्त एक बड़ा इंपॉर्टेंट, आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट टाउन है जाहिर है. लेकिन हुआ ये कि वो अपने साथ उस संदूक में अपनी उस गुलामी के दौर की चीजें रखा करता था, और जब भी कभी उसमें ये चीज आया करती थी कि मैं गवर्नर हूं और मैं महमूद गजनवी के इतना बड़ा फातेह है, उसके इतना करीब हूं और ये सारी चीजें, तो कहते हैं कि वो अपना उस संदूक खोल के जो है वो देखा करता था, और उस संदूक में जो उसकी चीजें होती थी अपनी उसकी जो वो जो गुलामी के दिनों की और गुर्बत के दिनों की जो चीजें थी उसको देख कर वो अपने आप को कहा करता था कि अयाज कद्र खुद बाशनास, अपनी कदर को जो है वो पहचाने रखो. क्या बात है यार, जबरदस्त, ये एक बड़ी खूबसूरत लाइन मुझे लगी थी, और वाकई अपने आप को जो है वो हमें इस चीज की याद दहानी जो है वो कराती रहनी चाहिए. जैसे मैंने अक्सर लोगों को जो है ना वो ये बात देखी और मुझे बहुत पसंद है ये बात. हमारे IBA में मेरे क्लास फेलो थे जो कि Perhaps he was the richest boy in our class, but he used to tell me कि उसके फादर ने उसको गाड़ी नहीं दिलाई, उसको दो तीन साल उसको बसों में ट्रैवल कराया इंटर के दौर में, और वो बसों में आया जाया करता था, और फिर उसके बाद जाके उन्होंने जो है उसको एक गाड़ी दिलाई थी कि लो ये गाड़ी चलाओ. सो या अयाज कद्र खुद बाशनास. चलें जी, और ये सीन है, और ये सीन है कि जी, तो मैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो है ना ये बात कर रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से हमें अपनी कदर को जो है वो समझना चाहिए. ओके, कामरान इसरार कहते हैं योर प्लेलिस्ट इज सुपर. सर ये तो मुझे पता है इसका, प्लेलिस्ट भाई की सेट है. अच्छा जी, कलीम जाफरी साहब, सर गुड मॉर्निंग, बैंक हलबीब में आप होते हैं, हमेशा अपने बैंक का नाम जरूर रखते हैं, और जिस बैंक में भी आप काम करते हैं आप बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे पता है उससे, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं. मगर कहा, जैसे कहा जाता है कि लव योर वर्क बट नेवर फॉल इन लव विद योर कंपनी, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन योर कंपनी स्टॉप्स लविंग यू. क्योंकि मैंने देखा अपनी जिंदगी में ये चीज, यानी मैं एक कंपनी में काम किया मैंने, वहां पे लोगों ने अपनी जिंदगी के 30-30 साल उस कंपनी को दे दिए, लेकिन सिर्फ वो चंद मिनट में उनको HR में एक लेटर मिला के उनको फारिग कर दिया गया. सो एहसान, आसान अपने लिए, अपने ऊपर एहसान कीजिए. सैयद जैदी साहब कहते हैं सलाम बॉस, बॉस गुड मॉर्निंग, नस्तालीक उर्दू पर सम डिस्कशन वुड बी अ गुड आइडिया इन योर अर्ली मॉर्निंग शो. यानी नस्तालीक उर्दू के ऊपर डिस्कशन, मुझे पे क्या लाइक डिस्कशन क्या करना है नस्तालीक के हवाले से. वेरी नाइस. आतिका कहती है व्हाट अ ब्यूटीफुल सेइंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल सेइंग. ओहो एमी अलिया, एमी मैं तुम्हारा ही सोच रहा था अभी कसम से. आयास कदर खुद बादशाह ना, तुमसे कंफर्म कर लूं मैं कि ये लाइन मैं सही बोल रहा हूं या नहीं. लेकिन क्या कहते हैं जी एमी, कहते हैं इतना तवील हिजर है कि लगता है ये मुझे, इतना तवील हिजर है कि लगता है ये मुझे, मेरे तुम्हारे वसल का विसाल हो चुका है. क्या बात है, मेरे ख्याल से इसको यहीं पर रोक लेते ना, मेरे तुम्हारे वसल का विसाल हो चुका. अब ये है लग रहा है मुझे ना, ये थोड़ा सा भाई तुम शायर आदमी हो, मैं तो शायर आदमी नहीं हूँ, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कसरती पहलवान किस्म के आदमी है. लेकिन ये मुझे मुझे लग गया था कि अगर तुम इसको हो चुका पे छोड़ देते तो ये बड़ा अच्छा लगता है. ये है जो लग रहा है ना, मुझे पता है वजन करने के लिए तुम कर रहे हो, लेकिन बहरहाल चलें जी. ओके अनीक अहमद कहते हैं चैट जीपीटी एंड द यूएस लॉयर. हाँ ये अच्छी खबर आप लेकर आए. अ न्यूयॉर्क लॉयर इज फेसिंग अ कोर्ट हियरिंग ऑफ हिज ओन आफ्टर हिज फर्म यूज AI tool GPT for legal research. The lawyer who used the tool told the court that he was unaware that its content could be false. जी ये खबर काफी जो है वो इसको कवरेज मिली है कि अमेरिका में एक लॉयर ने, एक बड़े लॉयर ने जो है न्यूयॉर्क में ये बात एक्नॉलेज की है कि उसने अपने केस की रिसर्च के लिए जो है वो चैट जीपीटी को जो है वो इस्तेमाल किया और कहीं लगता है कुछ ऊंच नीच जो है वो इस हवाले से हो गई है जिसपे वो कुछ अपनी क्लैरिफिकेशन और ये सब दे रहे हैं. लेकिन यार सी दिस इज द रियलिटी. अभी किसी ने मुझसे इंस्टा लाइव पे भी पूछ रहा था अबाउट समबडी वाज आस्किंग मी अबाउट वेब डेवलपमेंट कैसा है, तो मैंने कहा वेब डेवलपमेंट वुड बी टोटली डन बाय एआई, अभी नहीं तो एक साल में, सवा साल में, डेढ़ साल में. सो डोंट प्लीज इन्वेस्ट योर टाइम इन समथिंग which is going to be replicated. I mean seriously, मुझे सबसे ज़्यादा जो concern नज़र आ रहा है वो जो ये accountants वाली जो jobs हैं, this is one thing that is, I think ऐसा लगता है accountancy वाली jobs जो है ना ये तो बनी ही जो है AI के लिए बनी है, ये computer के लिए बनी दी है jobs कभी भी ना, यानी cash register से लेकर अब जो AI का इस्तेमाल होने वाला है. So if you are जैसे कहते हैं if you are into this field, just think about your future. All right. Acha ji, assalam alaikum. Muiz kehte hain, in one of his vlogs, Muiz Pirzada has shown the reverse picture of Ghaznavi in Ayaz, which we never knew. Have you listened to that? I know Muiz Pirzada must have researched before claiming that. Nahi, main aapko Ghaznavi, Mahmood Ghaznavi ka ek different perspective bhi de deta hu. Mujhe yaad hai ki main jab Anees Hussain ke yahan padhaya karta tha, IBA mein, IBA ki taiyari ke liye padhaya karta tha, to phir hum jab history padhte rahe, to usme Mahmood Ghaznavi and all, and I used to give, मैं 2003-04 की बात कर रहा हूँ, यानी वो फेसबुक के जमाने से पहले की बात. और उस जमाने में मैं जब बच्चों को महमूद गजनवी का एक अल्टरनेट पर्सपेक्टिव दिया करता था तो बहुत सारे बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल हुआ करते थे. और वो आई थिंक मैंने शायद बहसत उस्ताद ये जरूर कोशिश की बच्चों में कि जरा उनको जरा थोड़ा सा उनकी सोच को जरा ओपन करें एंड ऑल, उनको जरा रियलिटी चेक्स दें अबाउट द हिस्ट्री. आजकल तो वो मैंने सुना है वो मुजम्मिल शाह है, मुजम्मिल हुसैन है, कौन है, बड़े पैसे कमा रहे हैं इस चीज के ऊपर. लेकिन गुड यार चलें जी अभी आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट दैट वाज जुनून विद रूह की है प्यास में. गाना काफी तवील है अनीक साहब, लेकिन मैंने पूरा चलाया है गाना. मैं इस गाने में है कोई जादू है इस गाने में, और बड़ी बेचैनी और इस्तराबियत है इस गाने में, जो कि ज़ाहिर है इस वक्त हमारे माशरे पे जो है वो बड़ी सही मानों में सही बैठती है. बट अभी सीन क्या है, अभी ये सीन है दैट बहरहाल सादात का मैसेज आया, कहते हैं माई कॉलीग एंड फ्रेंड सजाद अनीस इज योर फैन एंड साइलेंट लिसनर फॉर द पास्ट 15 इयर्स. दैट इज ग्रेट. सजाद इज आर GM एडमिनिस्ट्रेशन एंड वी आर प्लानिंग ऑन होस्टिंग यू नेक्स्ट टाइम यू आर इन इस्लामाबाद. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई एम इन इस्लामाबाद, आई वुड लव टू बी होस्टेड बाई यू यार. बिल्कुल. एंड देन वी हैव गॉट ओहो राना कहती हैं सच अ बेसुरा सिंगर. यार दिल तोड़ दिया आपने भाई, अली अजमत है सिंगिंग राना, व्हाट आर यू सेइंग. लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं आप कह रही तो कह रही है. यार मैं आज अभी मुझे यूएस डेट सीलिंग पे बात करेंगे ब्रेक पे आके, लेकिन यार एक चीज ना मुझे बहुत खटक रही है आजकल, एंड देर इज सम सीरियस एंड सम रेडिकल चेंज विच इज टेकिंग प्लेस इन पाकिस्तानी एडवर्टिजमेंट सीन राइट नाउ. बिकॉज यार ये जो मेरे पास आपको पता है कि पिछले कई सालों से रोजाना अखबारात आते हैं मेरे, और मैंने ऐसा काल जो है ना वो देखा नहीं है. बिकॉज जो लोग इंस्टा लाइव पे इस वक्त मुझे देख भी रहे हैं उनको मैं दिखाता भी ये चलूं दैट दिस इज रोजनामा दुनिया, चलें छोटा अखबार है, बट दिस इज जंग का इश्तिहारात. सिर्फ एक ऐड आया हुआ है, वो क्वार्टर पेज भी पूरा नहीं है, बट वो कोई मसला नहीं है बिकॉज वो जियो का अपना कोई ड्रामा आया है, एहराम जुनून, ऑल राइट, उसका वो इश्तिहार आया हुआ है, ठीक है. नीलम साहिबा नजर आ रही है मुझे इसमें, क्या नाम है इनका पूरा, नीलम समथिंग. अच्छा चलें जी, ओके, डॉन, नो एड्स, ओके, एक्सप्रेस, एब्सोल्युटली नो एड्स. These are three big Pakistani newspaper, and guys, this has been the case for the past many days. Ishtiharat is waqt aa nahi rahe hain. Is it reflecting the overall situation of the economy? Ya jo print hai, jo ek bahut important factor hum miss out kar rahe hain yahan pe, especially if you are into advertisement and people who are professionals and taking those decisions. In fact, I was sitting yesterday, jo breakfast tha, wo ek bahut badi Pakistan ki financial services brand ke marketing ko dekhte hain, unse mujhe puchni chahiye thi ye baat. Are they having a second look at the way where they are spending their money? Because aapko ye baat pata hai ki Pakistan mein television, dekhiye television ishtiharat to apni jagah ek hai issue. A lot of people are not watching television now. I mean, TV logon ke jo drawing room ka hissa ya apne unke living room ka hai, jisko hum TV lounge Pakistan mein kehte hain, uska hissa hua karta raha. So people generally jo log mujhe milte hain, mujhe bata rahe hain that they are not watching news TV aajkal, wo news wagera zyada dekh nahi rahe hain wo. लेकिन इस वक्त बड़ी एक दिलचस्प सिचुएशन पाकिस्तान में इस मई के महीने में, जहां इतना कुछ हुआ है वहां पे एक और हुई कि पाकिस्तान में आपको पता है कि जो एडवर्टाइजर्स होते हैं ये अपने टेलीविजन की जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसको बेस करते हैं ऑन अ समथिंग कॉल्ड TRP. एंड TRP जो है, इट्स कॉल्ड द TV रेटिंग पॉइंट्स. पाकिस्तान में यानी लोग को होता यह है कि एक सर्टन सैंपल आप पॉपुलेशन का उठा लेते हैं और आप उनके व्यूइंग बिहेवियर को स्टडी करते हैं. अक्सर आप देखते होंगे बहुत सारे TV शोज कहते हैं हम नंबर वन हो गए, हमारे ये TRPs जा रहे हैं, इसके फलाना ये TRPs जा रहे हैं. सो व्हाट इट एक्चुअली हैपेंड राइट नाउ इज दैट पाकिस्तान में जो TV रेटिंग पॉइंट्स एक कंपनी इशू करती है, इसका नाम मीडिया लॉजिक्स है. मीडिया लॉजिक्स इज बीन अराउंड फॉर ऑलमोस्ट 2 decades नाउ. इस महीने इस गवर्नमेंट ने, जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, इन्होंने मीडिया लॉजिक्स के ऑफिस को छापा मार के उसको सील कर दिया. कहा यह जाता है कि उसके जो ओनर थे वो काफी क्लोज थे इमरान खान के, पता नहीं वल्ला आलम, बल्कि इमरान खान के एक जमाने में वो मीडिया एडवाइजर जो है वो भी रहे. सो अक्सर उन पर इल्जाम लगाया गया है कि उन TV चैनल्स की वो रेटिंग्स बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं जो कि इमरान खान साहब के जो पर्सपेक्टिव को ज्यादा एम्पलीफाई करते थे. अब उसमें रियलिटी क्या है हमें नहीं पता, हकीकत क्या है वी डोंट नो अबाउट दैट. समबडी शुड गो आउट एंड कैन शुड रिसर्च अबाउट दीज थिंग्स एज वेल. लेकिन मुझे ये लगता है कि काफी हद तक, मुझे पर्सनली ये लगता है कि काफी हद तक टेलीविजन की व्यूइंग जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करती है टू योर इंटरनेट व्यूइंग एज वेल. यानी फर्ज करें फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, आजकल बोल TV लोग देख रहे थे काफी, तो चेक आउट द नंबर ऑफ व्यूज दैट बोल TV इज गेटिंग फॉर देयर लाइव व्यूज एंड ऑल. मुझे ऐसा लगता है कि इट अब न्यू TV है. आई मीन आई रियली डोंट नो व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई वॉच न्यू TV, मुझे नहीं पता. लेकिन अगर आप जाके देखें नंबर ऑफ पीपल द कॉन्करेंट व्यूअर्स जो कि उस वक्त न्यू TV देख रहे हो, उतने तो मेरा इंस्टा लाइव देख रहे होते हैं इस वक्त. आई एम सॉरी टू से, मैं कोई बहुत बड़ा बोल नहीं बोल रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस चीज के हवाले से. सो वॉट इज हैपेंड इज दैट द मीडिया लॉजिक्स इज नॉट देयर नाउ, सो द एडवर्टाइजर्स आर इन द डार्क नाउ. अब दे वैसे भी पाकिस्तान में ना जो मीडिया बाइंग हाउसेस हैं उनकी बहुत पावर है. 2-3 कंपनियां हैं जो कि लिटरली दे आर वेरी पावरफुल इन डिसाइडिंग के मार्केटिंग डॉलर्स कहां कहां एलोकेट करवाने हैं एडवर्टाइजर से एंड ऑल. बट नाउ द TV एडवर्टाइजर, द TV व्यूअरशिप इज गोइंग डाउन, वी ऑल नो अबाउट दैट. सो पीपल आर नाउ मूविंग टू ऑन डिमांड, जिसे कहते हैं ना कि अपनी वो व्यूइंग पे जा रहे हैं कि यार हमें ये चीजें हम देखना चाहते हैं. तुम अब हमें फोर्स नहीं कर सकते कि क्या दिखाओगे. आज तक तुम बोलते रहे और हम सुनते रहे, अब हम बोलेंगे और तुम सुनोगे. चिल्लाओ मत ठाकुर, ये कौन सा अमिताभ साहब का एक मशहूर डायलॉग था. तो दिस अप्लाइज टू द टेलीविजन व्यूइंग हैबिट्स ऑफ पाकिस्तानी एज वेल. सो या आई थिंक सूनर द TV चैनल्स ओपन देयर आईज टू दैट, बिकॉज सरकारी इश्तिहारात कब तक तुम्हें जिंदा रखेंगे यार. मुझे किसी ने ये बात बोली थी अभी रिसेंटली कि 70% ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट्स बीइंग डन इन पाकिस्तान राइट नाउ इज सरकारी एडवर्टाइजमेंट. और ये इमरान खान साहब, अगर आपको याद हो उस वक्त फवाद चौधरी साबिक मेंबर PTI हुआ करते थे, वजीर इंफॉर्मेशन इत्तलात और नशरियात के वजीर होते थे, और कहते ये हैं कि जी उन्होंने ये स्विच ऑफ कर दिया था, करवा दिया था कि जी सरकारी ऑस्टेरिटी पैसे बचाने. उन्होंने कहा यार ये इतने चुनने चुनने चैनल्स को क्यों इश्तिहारात दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इश्तिहारात कम करें यार. तो दिस स्लैश द गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट बाय मैसिव परसेंटेज, जिसकी वजह से पाकिस्तान में टीवी चैनल्स बंद होना शुरू हो गए थे. दो दो चैनल्स के मुझे नाम याद आ रहे हैं इस वक्त, लेकिन खैर एनीवे, या वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन. दिस इज, आई एम प्रीटी श्योर दिस वाज, जो एडवर्टाइजर्स हैं दे वुड बी डिस्कसिंग दिस थिंग अबाउट द चेंजिंग बिहेवियर ऑफ पाकिस्तानी. बिकॉज ये मेरे ये जहन में कहाँ से आया, ये अखबारात सिवाय अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जाहिर है 9 मई के इंसिडेंट्स के हवाले से उस पर जो एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए जो एक इश्तहार छाप रही थी, उसके अलावा किसी प्राइवेट कंपनी का, किसी चिंटू कैंडी का, किसी बंटी बंटी चॉकलेट का, इस तरह का, किसी टीवी का, किसी टीवी मैन्युफैक्चरर और ये वो फलाना, डिटर्जेंट का ये वो, अब मुझे जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं इश्तहार. चलें जी, बड़े ब्रेक की जाने मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द लास्ट लिंक ऑफ द शो सनराइज विद अदील. एंड या चलें जल्दी से बात करते हैं अमेरिकन डेट सीलिंग के हवाले से. अच्छा जी भाई, परसों जो है ना वो 1 जून है, और 1 जून 2023 वो तारीख थी जिसके बारे में अमरीका की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी, जिसको हम अपने हुर्फ आम में वजीर खजाना कहते हैं, जेनेट येलन साहिबा, उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर अमेरिका की जो दो सियासी पार्टियां हैं ये एक अग्रीमेंट पे नहीं पहुंची डेट सीलिंग बढ़ाने के हवाले से, सो अमेरिका विल बी फेसिंग एन इकोनॉमिक कैटास्ट्रफी, यानी एक बदतरीन हादसा जो है वो माशी तौर से होने वाला है. इसका मतलब ये है कि अमेरिका की सर्टन कमिटमेंट्स हैं जो कि उनको पे करनी है, या उनको कहना यह है कि अमेरिका को एक सर्टन लेवल ऑफ बोरोइंग करनी है, अमेरिका को एक सर्टन लेवल ऑफ कर्जा लेना है 1 जून को, जो कि अमेरिका नहीं ले पाएगा. अब इसके जरा बैकग्राउंड पे आ जाते हैं. ये डेट सीलिंग है क्या? ये डेट सीलिंग, जैसे कि नाम से लग रहा है, डेट मतलब कर्जा, सीलिंग मतलब छत, और ये बेसिकली एक लिमिट है जो कि अमेरिका की जो कांग्रेस है वो सेट करती है कि अमेरिका में कर्जा किस हद तक लिया जा सकता है. देखिए, अमेरिकन इकोनॉमी दुनिया की बहुत सारी और इकोनॉमीज की तरह डेफिसिट्स पे चल रही होती है, डेफिसिट पे यानी खसारे पे चल रही होती है. इसका मतलब क्या है कि उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो ऊपर है और उनके रेवेन्यूज जो है वो नीचे हैं. तो जब एक्सपेंसेस ऊपर हो और रेवेन्यूज नीचे हो, यानी एक्सपेंसेस ज्यादा हो और रेवेन्यूज कम हो, आप उस गैप को कैसे फिल करते हैं? आप उसके लिए कर्जा लेते हैं. ठीक है जी, अब आप जब कर्जा लेते हैं तो फिर जाहिर है कर्जे की सबसे खतरनाक चीज ये होती है कि आप को एक बार कर्जे की आदत पड़ जाए तो फिर ये आदत छुटती नहीं है. ओके, ऐसे अक्सर लोग होते हैं ना, उनको कर्जे की आदत पड़ जाती है, इससे भी मांग लिया, उससे भी मांग लिया, एंड वंस दे स्टार्ट आस्किंग फॉर मनी देयर इज नो स्टॉपिंग. ये बात शुरू शुरू में बुरा लगता है, उसके बाद दे गेट यूज्ड टू विद दैट. ठीक है जी, सो वो होता ये है कि अमेरिका ने पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये दौर था, उन्होंने अपनी कर्जों की एक हद सेट की थी. उन्होंने कहा था जी $31 trillion, नाउ इट इज अ ह्यूमंगस, एक मैमथ, एक ह्यूज, हम यहां पे अमाउंट की बात कर रहे हैं कि जो कि अमेरिका ने अपने लिए कर्जों की हद मुकर्रर कर दी थी कि हम इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे. अच्छा, अमेरिका हर कुछ सालों बाद अपने कर्जों की इस हद को बढ़ा रहा होता है, बिकॉज उनका डेफिसिट उनके कंट्रोल में आ नहीं रहा है, कोई ना कोई खर्चे हो जाते हैं. कोविड के दिनों में खासतौर से 2 साल पहले उन्होंने वैश्यों की तरह पैसे बांटे थे, जिसका आप देख रहे हैं दुनिया खमियाजा भुगत रही है. जो इस वक्त जिस लेवल का इन्फ्लेशन अमेरिका में भी है, जिसके लिए आपको पता है कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स अपने बहुत बढ़ाए. आई होप आप अब तक मेरा शो इतने सालों से सुनने के बाद इनके दरमियान एक लिंक कुछ ना कुछ डेवलप जरूर कर रहे होंगे. सो अमेरिका जो है वो दरादर कर्जे जो है वो लेता रहता है, और लेकिन अपने आप को डिसिप्लिन रखने के लिए, उन्होंने एक उसकी हमेशा एक हद तय कर देते हैं कि हम इस हद को क्रॉस नहीं करेंगे. कुछ सालों बाद वो उस हद पे भी पहुंच जाते हैं, और जब वो उस हद पे पहुंच जाते हैं तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि अब क्या करें? अब ये करें कि हद को बढ़ा दें, उस सीलिंग को जो है वो और ऊपर कर दें. अमेरिका में सीलिंग को बढ़ाने के लिए इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप, माफ कीजिएगा, जो बाइडन साहब के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये कि अमेरिका में जो ऐवान है वो डिवाइडेड है. सो कांग्रेस है जिसके 2 ऐवान है, जिसमें सेनेट जो है उसमें डेमोक्रेट्स को बढ़तरी हासिल है, लेकिन जो मालियाती मामलात होते हैं उसमें जो लोअर हाउस उनका कांग्रेस का है, जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, उसमें रिपब्लिकन पार्टी को वहां पे मामूली लेकिन सबकत जरूर हासिल है. सो उनके पास बहुत इंपॉर्टेंट ये बार्गेनिंग चिप आती है. नाउ अब आप कहेंगे तो बड़ी यार आसान की बात है यार, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी एक साथ बैठे और बैठ के अपने मामला सॉल्व करें. भाई अमेरिका की इकोनॉमी चलानी है, सबसे पहले अमरीका, वहां पे कोई नारा लगाता होगा जहर अमेरिका फर्स्ट, रिमेंबर डोनाल्ड ट्रंप ने नारा भी लगाया था अमेरिका फर्स्ट. तो ये साथ बैठ के अपने मामला निपटाएं, क्यों क्यों पंगों में पड़े हुए हैं ये. नाउ दिस इज वेयर द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज यानी जो सियासी नजरियात हैं वो आ जाते हैं. ये जो रिपब्लिकन पार्टी है ये कहती है कि यार ये अलल्ले तल्लों में खर्चे कम करो, लोगों को जो फ्रीबीज बांट रहे हो, हेल्थ केयर बेनिफिट दे रहे हो, लोन्स माफ कर रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, ये चीजें खत्म करो, लोगों की इनकम बढ़ाओ, टैक्स कम करो, वो खुद लोग अपने लिए चीजें जो है वो मैनेज कर लेंगे, जो कि आप जानते हैं इनविजिबल हैंड का एक कॉन्सेप्ट होता है कैपिटलिज्म में. लेकिन जो दूसरी जानब डेमोक्रेटिक पार्टी है वो कहते हैं नहीं जी, हम तो लोगों को कर्जे भी देंगे, हम तो लोगों की फलाह बहबूद के काम भी करेंगे, हम उनको फ्री मेडिकल एड भी देंगे, हम उनको स्टूडेंट्स के कर्जे भी माफ करवाएंगे. आपको पता है कि जो बाइडन साहब एक बहुत महंगा एक प्लान लेकर आए हैं जिसके तहत उनका प्लान ये है कि वो कर्जों को माफ कर देंगे जो स्टूडेंट्स को कर्जे दिए हुए थे. सो बहरहाल अब जो सीन हुआ है वो ये हुआ है कि इन दोनों पार्टीज के दरमियान डिस्कशन जारी था. एक आपको ये भी याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया जाना था जो बाइडन साहब को अपना दौरा, वो अधूरा छोड़ के जो है जापान से ही सीधा वापस वहां पहुंच गए थे अमेरिका, बिकॉज उनके जो रिपब्लिकन पार्टी के कांग्रेस में जो लीडर हैं लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में मिच मैकार्थी, उनके साथ उनके केविन मैकार्थी, उनके साथ उनके निगोसिएशन चल रहे थे. और अब ऐसा हुआ है कि बज़ाहिर इन दोनों पार्टीज के दरमियान, इन दोनों शख्सियात के दरमियान एक मिडिल ग्राउंड जो है वो आ गया है. और कल जो बाइडन साहब ने ये ऐलान भी किया था कि ये अब पेश किया जा सकता है कांग्रेस में अप्रूवल के लिए, जैसे ही कांग्रेस से इसको अप्रूव करेगा, इसको अमेरिकन सदर इस पर दस्तखत कर देंगे, जिससे अमेरिका की डेट सीलिंग अब कितने ट्रिलियन डॉलर से, कितने हंड्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर से बढ़ जाती है, वो हमें इसका अंदाजा हो जाएगा. लेकिन ऐसा लग रहा है बज़ाहिर अभी कि वो जो इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी जिससे मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया था, अमेरिका उससे बचने में कामयाब हो गया है. वेट एंड सी. वक्त आ गया, आप लोगों से इजाजत लीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात कल सुबह एक बार फिर होगी. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़. एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.